વધારે થોડું
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે જગન્નાથ બલદેવ સુભદ્રાની કી જય કદાચિત કાલિંદી તટ વિપિન સંગીત તરલો તટ વિપિન સંગીત મુદા ધીરે નારી વદન કમલા સ્વાદ્ય મધુપ વદન કમલા સ્વાદ્ય રમા શંભુ બ્રહ્મા મર પતિ ગણેશાર્ચિત પદો
Oh,
Thank you.
कलिपावन अवतार निताय गौर सुंदर की युग धर्म नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैश्च किम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणी कृष्ण चैतन्या नित्यानन्द गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण नित्यं परमात्मने बलभद्रसुभद्राय जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी कथानुरागी वैष्णव श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। भगवान के दिव्य गुण लीला को श्रवण करने के लिए आप पधारे हैं, यही प्रमाण है कि आपको भगवान से प्रेम है। क्योंकि जिसका जिसके प्रति प्रेम होता है वो अपने उस प्रेमी की कथा को सुनना चाहता है, उसके गुणों को गाना चाहता है। ये नेचुरल है, स्वाभाविक। यहाँ तक कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकता। ऐसे भी नवरात्र चल रहा है, भगवत जी का नवरात्र शुभ दिन है। ऐसे बड़ा प्यारा पवित्र महोत्सव है, लेकिन कलयुग की प्रभाव है कि कुछ बिगड़ चुका है। तो बुरा, भारत के बहुत भगवती का उत्सव है, उसमें भी सौभाग्यवती नारियों के लिए हमारे शास्त्रों में बड़ी अच्छी बातें बताई हैं इस महोत्सव के विषय में। नवरात्र, ऐसे हम गुजराती में कहेंगे तो नवरावनी रात्रि थी। नवरात्रि नहीं, नवरावनी रात्रि। लेकिन ऐसे कहने के लिए वास्तविकता में बड़े अच्छे दिन। और हम वैष्णव को भी शक्ति के चरणों में प्रार्थना तो प्रणाम तो करना ही चाहिए कि कृष्ण ने मति है, रक्षा करे की भक्ति दे। कात्यायनी महामाये महायोगी महेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुते नमः। रामायण में भी सीता जी ने यही कहा है, जो भी हो हृदय से धन्यवाद वैष्णव को। आइए श्री जगन्नाथ अष्टकम के दिव्य शब्द करुणा वरुणालय महावदान्य अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको गाया है, हम भी गाए सुने और समझने का विनम्र प्रयास करें। एक बार दूसरा श्लोक इसकी हम चर्चा आज करें तो उसको गा लेते हैं, आप लोग कृपा करके जैसे अभी दोहरा रहे तो पीछे दोहराइए। भुजे सव्ये वेणो शीर शिखी पीछं कटी तटे
भुजे सव्ये वेणो शीर शिखी पीछं कटी तटे
दुकुलं नेत्रांते सहचरि कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे
भुजे सव्ये अपने बाएं हाथ में वेणु शिरसी अपने शिर पर शिखी पृच्छ मयूर का पंख कटी तटे कमर प्रदेश में दुकुलम दुपट्टा पीतांबर नेत्रांते अपने नैनों की कोर से आंख के अंतिम भाग से सहचर अपने गोप सखा के साथ कटाक्षम दृष्टि तिरसी चितवन विदधते देखते डालते सदा सदैव हमेशा श्रीमान सुंदर पवित्र वसति सॉरी वृंदावनम वृंदा देवी का वन
श्री
ब्रज धाम वसति निवास करते हैं लीला रास आदि माधुर्य क्रीड़ा परिचयो प्रचार करते हैं या प्रसारण करते हैं जगन्नाथ सारे जगत के पालक स्वामी मेरे इष्टदेव नयन पथ दृष्टि मार्ग में नयन पथ गामी मेरे दृष्टि मार्ग में भवतु प्रकट हो जाए दर्शन
मैं
मुझे अनुवाद की कृपा करके जा रहा है। जिनके बाएं हाथ में मधुर मुरली है और जिनके सिर पर मोर पंख है और कमर में पीतांबर कसे हैं और अपने नैनों की कोर से गोप सखाओं को देखते हैं और सदैव वृंदावन में रास आदि लीला विहार करते हैं,
रास आदि लीला विहार करते हैं,
वे जगन्नाथ स्वामी,
वे जगन्नाथ स्वामी
मेरे नयन पथ में पधारिए,
मेरे नयन पथ में पधारिए।
ये प्रार्थना है भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों में। प्रत्येक श्लोक के अंत में जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में, ये मूल वाक्य है। ये सारा भगवत गुण गाने का प्रयोजन क्या है कि हे प्रभु आप दर्शन दें। वास्तव में जीव अर्थात हम मनुष्य कर भी क्या सकते, एक ही हमारे पास होता है, भगवान के चरणों में प्रार्थना। गुरु और शास्त्र के आदेश में हमें प्रयास करना है साधना भक्ति में, और साथ साथ प्रार्थना करना, फिर भी प्रतीक्षा, वो कृपा करेंगे। तो ये श्री राधा भाव हृदय श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी धाम में पुरुषोत्तम क्षेत्र में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण को ये प्रार्थना करो, हे मेरे इष्ट देव, मेरे स्वामी, आप पधारिए हमारे नयन पथ पर। कल हमने समाप्त किया था पितामह भीष्म जी के पावन स्मरण से सत्र को, कि ठीक ऐसी प्रार्थना उन्होंने की और भगवान सुनते हैं। अगर हृदय से प्रार्थना हो तो प्रभु पधारते हैं। जैसे पितामह भीष्म जा नहीं सकते थे लेकिन भगवान आए, और आने के बाद पितामह ने पूर्ण लाभ लिया, बोले अब जाना नहीं, अंत तक जब तक मैं शरीर न त्यागूं तब तक नहीं जाना। वैसे ही हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद जिसको नामाचार्य की पदवी प्राप्त है श्री हरिदास ठाकुर, अभी शायद 15-20 दिन पहले आप लोगों ने उनका तिरुभाव तिथि मनाया होगा। हरिदास की कुटिया में जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी गए तो बड़ा मधुर संवाद है, सारी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन जो हरिदास ने प्रार्थना की जैसे भीष्म ने के, जिसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कर रहे हैं, वही प्रार्थना, बोले प्रभु मैं आपके पहले इस शरीर को छोड़ना चाहता, मैं आपका अंतिम लीला देखना देख नहीं पाऊंगा, इसलिए कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। चैतन्य महाप्रभु से हरिदास जी ने कहा क्या इच्छा है? देखिए भगवान अपने भक्त की सभी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त भगवान के पास कोई इच्छा ही नहीं करता, दोनों होड़ है, कंपटीशन। भगवान का व्रत स्वभाव है कि अपने भक्त की सारी इच्छा पूरी करनी, और भक्त का क्या व्रत स्वभाव है, कोई इच्छा नहीं, अटका हुआ है काम का बीच में। जैसे भागवत में है 10:39-2 सुप्रसन्न ऋषिकेश किम लभ्य भगवती, अगर भगवान श्री कृष्ण श्री निकेतन किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसके लिए संसार में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। लेकिन तथापि तर्क करके चित्त राजन नहीं वांछते कर, फिर भी हे राजा परीक्षित शुद्ध भक्त भगवान से कोई इच्छा नहीं करता। वर्णन ऐसे ही शुद्ध भक्त में स्थान है हरिदास ठाकुर में, तो वो कहते हैं मेरी एक ही इच्छा है। बताइए हरिदास जी, महाप्रभु प्रसन्न हो गए कि कृपा करके हमसे कुछ मांगे, भगवान से शुद्ध भक्त मांगते तो भगवान बड़े खुश होते हैं कि मेरा ऋण उतार दे, नहीं तो भगवान बंधे रह जाते हैं भगत से।
हृदय धरी वो तुमार कमल चरण, नयने देखी वो तुमार ये चांद वदन।
कविराज महानुभाव ने श्री चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर के एजिटिस शब्दों पर रखा है, क्या कह रहे हैं, मेरी इच्छा है हृदय धरिगु तुमार कमल चरण, मैं चाहता हूं कि जब मैं ये शरीर त्यागू तो आपके जो कमल चरण है वो मेरे कहां पर रखे, आप मेरी छाती पर रखे, और नयने देखी वो तुमार ये चांद वदन, आपका जो पूनम का चांद जैसा मुखड़ा है ना उसको मैं देखते हुए छोड़ना चाहता हूँ।
जीवारुचरिबो तुमार श्री कृष्ण चैतन्य नाम जीवारुचरिबो तुमार श्री कृष्ण चैतन्य नाम यही मत मोर इच्छा छाड़िबो प्राण
मैं अपने प्राण त्यागू यही मत मोर इच्छा मेरी इच्छा है कि जब मैं मेरे शरीर प्राण को त्यागू तब जीवार उच्चारिबू तोमार श्री कृष्ण चैतन्य मैं आपके पवित्र मधुर मंगलमय श्री कृष्ण चैतन्य नाम का कीर्तन गाता हुआ शरीर त्यागा महाप्रभु ने सारे मनोरथ पूर्ण किए आप उस प्रसंग से परिचित हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ने किया देखिये भक्तों हम लोग यहाँ पर सत्संग हरि कथा साधना सेवा रत है हमारा लक्ष्य क्या है यही ना कि भगवान का स्मरण अखंड हो सततम स्मर्तव्यो विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित जितने यम नियम विधि निषेध है किस लिए भगवान के पावन स्मरण यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी भागवत कथा शुरू करें द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय के छठे श्लोक में कहते हैं एतावान् सांख्य योगाभ्यां स्वधर्म परनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसा अन्ते नारायण स्मृति ये जितने भी योग साधन धर्म कर्म है लेकिन जन्म लाभ मनुष्य का जन्म हुआ उसका परम लाभ क्या है अंते नारायण स्मृति भगवान नारायण का स्मरण में यही पूर्णता जिसमें भीष्म पास है जिसमें हरिदास पास है और इन चरित्रों से हमें प्रेरणा लेनी है और यही प्रार्थना करनी है जो मूल भाव जगन्नाथ स्वामी नयन पथ हमारे नयन पथ में पधारे श्याम सुंदर के चरणों में यही प्रार्थना मुदा भीरी नारी वदन कमल भगवान श्री कृष्ण भी अपने प्रेमी भक्तों के दर्शन को तरसते हैं जैसे भगवान अपने भगवान के दर्शन को भक्त तरसते हैं ये यथा माम प्रबद्ध भजाम ऐसे भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन को तरसते हैं तो गोपिया तो भगवान के भक्तों में शिरमोर है ना नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा यथा ब्रज गोपी का नाम भक्ति का आइडियल उदाहरण ब्रज की गोपिया है रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गिणी अकल्पिता चैतन्य महाप्रभु का भी यही मत है तो उस अनुसार गोपिया श्रेष्ठ है अभिरी नारी तो जब सामान्य भक्तों के दर्शन को भी ठाकुर जी तरसते है तो गोपियों के मुख कमल को आस्वादन करने में तो ये भ्रमर बन जाते हैं। भ्रमर को आप सुने देखे होंगे हमारे भारतीय शास्त्रों में आसक्ति का उदाहरण भ्रमर से दिया है बंधना खलु जितने प्रकार के बंधन है लोहे के रस्सी के इसमें सबसे खतरनाक आसक्ति का बंधन है लोहे का एक दिन तोड़ा जा सकता है रस्सी का तोड़ा जा सकता है लेकिन अंदर जो ममत्व है हमता ममता की जो गांठ बंधन है वो छूटती टूटती नहीं है प्रेम रज्जु आकर्षक ये जो प्रेम आसक्ति का रज्जु है वो सबसे मतलब बलवान रज्जु है और उसका उदाहरण है भ्रमर पंकज कोश में भ्रमर जब बैठ जाता है तो उस कमल रस के पराग को चूसने में इतना आसक्त हो जाता है कि सूर्य अस्त होने पर कमल बंद हो जाता है तो ये प्रभु जी अंदर बंद हो गए लेकिन फिर भी दारू भेदे भी निपुणों को भगवान ने उसको उसकी चोंच में ऐसी शक्ति दे कि वो लकड़े में भी छेद कर सकता है लेकिन वो आसक्ति में इतना प्रेम में मस्त है रस लेने में कि वो कमल की कोमल पंखड़ियों को भी छेद नहीं कर पाएगा जबकि लकड़ी को कर सकता है चाहे तो दारू भेदे भी निपुणों षडंगरी षड भ्रमर को छह पैर होते हैं इसलिए उसको षडंगरी कहते हैं शास्त्र में लेकिन भी फिर नहीं चलता क्या सोचता है अंदर बैठा हुआ हा मजा आ रहा रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात अरे रात तो अभी चली जाएगी फिर सुबह होगा वो तो भास्वान उदिष्यति तब सूर्य उगेगा तो निश्यति पंकज तो पंकज मतलब कमल फिर खिलेगा तब उड़ जाऊंगा जैसे हम लोग करेंगे माला नवरात्रि आनंद कर लेते हैं तो आता रहता है, ये तो सब भगत लोग तो बोलते रहते हैं, आयोजन करते रहते हैं, करेंगे,
भ्रम लगे हैं भोगों में। हमारे जो आचार्य ने उदाहरण दिया ना, और तब तक उसी समय गजराज वो कमल सरोवर में आता है पानी पीने के लिए, उसको क्या उसी कमल को पकड़ता है जो अंदर प्रभु जी बैठे हैं इच्छे प्यार वाला, और उठा के तोड़ के फेंक देता है इनको इसी में। हंत हंत नलिनी गज हार, उसको उठाता है कमल को और गज उजहार करके फोड़ फोड़ देता है और वो समाप्त हो जाता। तो इससे उदाहरण दिया गया कि मत फंसी आ सकती बंधन में, जैसे वो भ्रमर फंसा और मरा। चांस है, मनुष्य जीवन है, सुविधा है, समय है और शरीर में शक्ति है, तब तक साधना भजन कर लीजिए। कल का भरोसा, कब रोग आ जाए, कौन दुख, कौन कैसी परिस्थिति हो, भजन होगा नहीं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सलाह दी गई इस उदाहरण से। तो यहाँ पर भी भ्रमर का उदाहरण कहा है कृष्ण। भागवत में बड़ा मधुर प्रसंग है भ्रमर की, साक्षात मधुकर के रूप में भगवान ये रस लेते भी है। राधा वाक्य सुधा को पीने के लिए श्याम सुंदर भ्रमर बन जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम वाक्य है। तो ये भी एक मार्मिक प्रसंग है, लेकिन भ्रमर शब्द से एक एक थोड़ा सा गुण टपकता है कि भ्रमर क्या करता है, एक ही पुष्प का रस नहीं लेता, इसमें रस लिया फिर उठ गया फिर इधर, ऐसे श्याम सुंदर इस गोपी ये गोपी हो करोड़ों लंपटो, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शब्द दे दिया प्रेम की गाली, यथा तथा विद धातु लंपटो, लंपट मतलब एक से संतुष्ट नहीं है, तथा फिर भी मत प्राणनाथस्तु सैव नापरः। देखिए भक्ति की गरिमा, भक्ति की वास्तविक मधुरता, शुद्ध भक्ति। राधा रानी कहती है कि चाहे मेरा आलिंगन करो, इसमें शब्द है रसानंदी राधा सरसव पुरालिंगन सुखो, छठे श्लोक में, चाहे मुझे पैरों से तोड़ फोड़ दो, पिनस्तु मत, पिनस्तु मतलब मिक्सर में चक्की पीस दो, पीस देना संस्कृत में, वाह मतलब अथवा पिनस्तु माम मुझे चुच भी कर, यथा तथा आपको जो इच्छा हो जो पसंद हो जो आप राजी हो करो मेरे प्राण। इसी का अनुवाद बंगला में महाप्रभु ने किया है। अब चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 20वें अध्याय में जहाँ चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के अंतिम श्लोक को बोलने के बाद संस्कृत में इसका 15 श्लोकों में बंगला कर दिया अनुवाद, स्वयं श्रीमुख से व्याख्या कर दे स्वरूप दामोदर और रामानंद के बीच में। ऐसे राधा रानी है, ललिता विशाखा है, वो गंभीरा। कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में कहते हैं कि कृष्ण मेरे प्राण है, मेरे जीवन है, मेरे प्राण के भी प्राण। तो क्या करूं, हृदय ऊपर धरो, सेवा करी सुखी करो, मोर रहे सदा ये ध्यान। बस वो कैसे प्रसन्न हो जाए, मैं उसकी सेवा करके उसको सुखी करना चाहती हूँ। अगर श्याम सुंदर किसी अन्य गोपी से सुखी हो रहे हैं तो मैं उस गोपी के यहाँ नौकरानी बनने को तैयार हूँ, उसके बर्तन मांगू और उसे कहूँ कि मेरे प्रियतम को प्रसन्न। पढ़िए श्लोक, क्योंकि आज सुबह ही श्रीमान रुक्मा प्रभु जी सुना रहे थे एक श्लोक चैतन्य चरित। भक्ति मतलब क्या, कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम ना, प्रेम मतलब कृष्ण प्रसन्न वो संतुष्ट होने चाहिए, ये भक्ति है। आत्मा अपने की अपने को संतुष्ट प्रसन्न करना है तब तो काम हो जाए आत्मेन्द्र। कविराज महानुभाव ने चरितामृत में भक्ति का डेफिनेशन दे दिया क्लियर कट, इसीलिए नीच सुख दुख गोपी ना करे विचार, मुझे सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है गोपी का विचार नहीं है। तत् सुख सुखित्व, गोपी मतलब कृष्ण प्रसन्न हो, ये शुद्ध भक्ति कृष्णानुकूलनम का ये व्याख्या है, कृष्ण की अनुकूलता बस और कुछ नहीं। हम लोग तो क्या है, अपनी अनुकूलता, अपनी सुविधा, अपना स्वागत सत्कार, अपने को सब सुविधा हो तो भजन, नहीं तो टाटा प्रभु मिलेंगे। हम यहाँ सुविधा या कुछ सुविधा आने, हमारा काम है यहाँ सेवा करने आना जगन्नाथ की चरण, तन से मन से धन से जो इसी में जीवन की सार्थकता है। अगर आप वो भी भाव को समझ रहे हो स्वयं राधा रानी के, पर कितना मधुर उदाहरण दिया है एक स्त्री का, आप पढ़िए, व्याख्या का समय नहीं है लेकिन आप पढ़िए तो समझ में आएगा कितनी ऊंची बात। और उसको तो पढ़ने से भी नहीं समझ में आएगा, किसी प्रेमी वैष्णव परंपरा के आचार्य से समझना पड़ेगा कि इसका क्या वास्तव में अर्थ है, तब क्लियर होगा। तो ये मूड है राधा, ये जैसे यहाँ का आस्वाद्य मधुकर, नहीं नहीं ये कृष्ण का दिव्यता है, ये इसके प्रेम की पराकाष्ठा है, ये सांसारिक भौतिक नहीं है जैसे शरीर में स्त्री पुरुष आठ चर्म में लगे रहते हैं, ये प्राकृत कुछ नहीं है, ये अप्राकृत प्रेम राज्य की पावन लीला है। और इसको सुनना चाहिए आचार्यों से वैष्णवों से, ये भी लिखा है भागवत में तस श्रुत्वा परो भवे, क्योंकि भगवान ने ये लीला इसीलिए की है कि हम परंपरा के वैष्णव को सुन के पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय हमारे हृदय के भद्र चले जाए, ये हमारा सुनना है इसको, लेकिन सही व्यक्ति से सही स्तर पर सही चेतना से और साधना हमें करनी है, सुनकर केवल बहना नहीं है सहज में, ये दोनों का मिलान होगा तब व्यक्ति साधक शीघ्रता से कृष्ण प्रेम की ओर अग्रसर होगा। तो यहाँ पर इस श्लोक पर हम बोल चुके हैं, फिर भी मन लगा रहता है इन शब्दों में आस्वादन, जैसे भगवान गोपी मुख कमल का आस्वादन कर रहे हैं, ऐसे भक्त लोग भगवान की लीला का सारंग इव सारभु सारंगाणाम पदाम्बुजम, भ्रमर को सारंग कहते हैं मधुप को, वो सार सार वस्तु को गाता है, इसलिए वैष्णव को सारंग कहते हैं, परीक्षित को सारंग कहा सुख जी ने नैमिषारण्य में, कि उन्होंने कलयुग का सार पकड़ा हरि नाम, इसलिए कलयुग को शरण दी ना 18वें अध्याय में प्रथम स्कंद के 6वां श्लोक, नानो दृष्टि कलिस सम्राट सारंग इव सारभू, कलयुग को सार सार वस्तु पकड़ लिया कि एको अस्ति महान गुण, इसमें एक गुण है कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत 12वें में, हरे कृष्णा हरे
कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे
हरे हरे राम।
यह कृष्ण कीर्तन, ये महामंत्र, ये श्रवण भक्ति कीर्तन भक्ति, यही सार है कलयुग का। तो महाराज को परीक्षित को सारंग कहा वहां पर, सारंग मतलब भ्रमर मधु, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी भाव में जगन्नाथ के वदन कमल के लिए उसके नेत्र भ्रमर बन जाते हैं, त्रिषाढ़ गाढ़ करे पान, जैसे आर्त बहुत प्यासा हो और उसको कोई पेय पदार्थ मिल जाए रस मन पसंद तो कैसे पीता है, ऐसे भाव से पी रहे थे चैतन्य स्वयं गाते हुए जगन्नाथ जी के मुख कमल को पी रहे। तो अन्य अन्य परस्पर ये है राधा कृष्ण की ये मधुर लीलाएं, लेकिन अभीर नाली, एक वैष्णव ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है कृष्ण गीता में, कहते ना मन मना भव, मेरे में मन लगाओ, कैसे लगेगा, इसी भगवान की लीला को सुनने से मन लगता है, भगवान जिनका मन लगा है ऐसे वैष्णव के चरित्र जब सुनते हैं तो अनायास बिना चाहे मन लगता है। अगर आप कथा को सुन रहे हैं तो आप सब भूले हुए होंगे किधर से आया क्या करना, अभी खत्म होते ही मन फिर आप अपनी साधना, जितना कथा में जितना भगवान में मन लगता है इसी ऐसा कोई साधना में नहीं लगता, आपका अनुभव होगा भगवान के रूप का स्वभाव का लीला का जो वर्णन होता है नेचर स्वाभाविक सीधी विधि। तो भक्त प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु मन आप में लगाने को आप कहे हो, और हम भी चाहते हैं कि आप में मन लगे, आप भी कह रहे हो हम भी चाहते हैं, लेकिन कुछ अटक रहा है बीच में है ना, प्रॉब्लम है कुछ, कहाँ क्या प्रॉब्लम उसको ढूंढ रहे हैं, सब भक्त यही ढूंढ रहे हैं अपने अपने बुद्धि तल पर। लेकिन इन्होंने जो भाव दिया हमको पसंद आया कि वो कहते हैं कि रत्ना कर तब गृह गृहिणी च पद्मा किं देयमस्ति तव पुरुषोत्तमाय, प्रभु हे जगन्नाथ हे पुरुषोत्तम, हमने सुना है कि रत्नाकर तव गृह, आपका घर तो समुद्र है, शिरोदक्षाई के रूप रत्नाकर मतलब सारे रत्न का आगार, समुद्र को रत्नाकर कहते, उसमें बहुत रत्न पड़े हैं ना। राम राज्य में वर्णन है कि रत्न बाहर अपने व्यवस्थ से निकालते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और परीक्षित के शासन में समुद्र अपने लहरों से क्या निकालता था, रत्न। आजकल युद्ध में क्या निकलता है, सड़े हुए नारियल, फटे हुए कपड़े, कचरा। आप कहीं भी जाइए सिंह पर तो यही अभी रत्न नहीं निकलता। लेकिन भागवत में वर्णन है टीका कि राम राज्य में समुद्र रत्न निकालता है, रत्नाकर। सारे रत्न इसने पड़े कितने पता नहीं। तो प्रभु आपका तो घर ही रत्नों का है, और गृहिणी च पद्मा, और आपकी पत्नी भी तो पद्मा, लक्ष्मी जी है साक्षात, सारे धन वैभव की अधिष्ठात्री। तो आपका घर भी रत्न का आगार, आपकी पत्नी भी लक्ष्मी, तो की किम देयम अस्ति, तो फिर मैं आपको क्या दूं, किम देयम अस्ति पुरुषोत्तम आय। लेकिन हाँ, पकड़ में आया, आपके पास एक वस्तु नहीं है, आपकी लक्ष्मी घरवाली है, आपका समुद्र रत्नों का घर है, लेकिन एक आइटम आपके पास से चोरी चला गया। क्या? आभीर वाम नयनापहृत मानसाय। ये जो वृंदावन की गोप बाला आभीर नारिया है, उसने अपने प्रेम भक्ति प्रभाव से आपके मन को चोरी कर लिया। आज तक आपने यह चुना होगा कि कृष्ण चित्त चोर है, कृष्ण सबका मन चोरते, लेकिन कृष्ण का मन भी गोपी मदन मोहन मोहिनी। और इसलिए आपके पास मन नहीं है, तो एक काम करिए, दिव्य दत्तम मनो में यदुपते कृपया गृहाण। तो एक काम करिए, मेरा मन ले लीजिए, आपका मन तो बिजी है, तो मेरा ऐसे भी मुझे बहुत परेशान है, तो दत्तम मैं प्रेम से आपको देना चाहता हूं, हे यदुपति मैं मनम गृहाण। मतलब अपने मन को भगवत सेवा में अर्पण कर रहे, कि और तो कुछ है। देखिए भगवान भी गीता में यही मांगते हैं ना, तभी अगर आपको आपके पास आपका मन होता, आपको जरूरत नहीं होती, तो आप गीता में मांगते मन तना मत तना मत धना, ऐसा नहीं बोला, मन मना, आपका मन दो। मतलब आपको मन नहीं है, काम करिए, मेरा फ्री पड़ा और मुझे परेशान करो, ऐसे भाव है, आइडिया लगाया कि कृपया मेरा मन आप ले लीजिए, क्योंकि आपको नहीं। देखो ये सब आपने सुना ना, भक्ति रसायन सिंधु में भक्ति के लक्षणों में एक कृष्ण आकर्षिणी चर, जो भक्त भजन करता है वो सर्वाकर्षक कृष्ण को भी आकर्षित करता है। भक्ति में वो शक्ति है कि श्याम सुंदर अपना धाम छोड़कर भी उस भक्त के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं जहां भक्ति है। इसलिए भक्ति का एक लक्षण रूप शुभदा क्लेशग्नि, उसमें एक लक्षण है कृष्णा आकर्षिणी च, कृष्ण को भी। फिर मोक्ष लघुदा कृता और भी है, छह लक्षण है, रूप जी रूप गोस्वामी ने बताए बड़े सुंदर रूप से। तो बस इस तरह देखो, सुनते ही मन भगवान में लगता है। जिस जगन्नाथ को नयन पथ पर पधारने की प्रार्थना हो रही है, को ऐसे जगन्नाथ बोले, भुजे सव्य वेणु शिरसी शिखि पृच्छं कटी तटे। सव्य, सव्य मतलब लेफ्ट होता है, बायां, भुजे मतलब हाथ, जिसके बाएं हाथ में वेणु है। भुजे सव्य वेणु शिरसी शिखी पृच्छ कटी तटे। देखिए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने इस नाम से गीता में पुकारा है, 11:33 तस्मात् उत्तिष्ठम यशो लभस्वम। कृष्ण कह रहे हैं कि उठो, यशो लभस्वम, यश प्राप्त करो, जित्वा शत्रुन भोक्षण समृद्धम, अपने शत्रुओं को जीतो और भूमि के समृद्धि को भोगो। मया एव निहिता पूर्व एवं निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। मैं इन लोगों को मया एव निहिता नितराम हता मार चुका हूं पूर्वम एव, मैंने जब खड़ा होकर तुमको दिखाया ना ये तुम्हारे ये, उसी समय उसको काट दिया था। निमित्त मात्र, तुम निमित्त बनो। क्या कहा अर्जुन को? सव्य साची। प्रभुपाद लिखते हैं वहां, सव्य साची रिफर टू वन हु कैन शूट एरो वेरी एक्सपर्टली इन द फील्ड. किसे कहते हैं सब ये सच? अर्जुन जो रण मैदान में बड़े ही एक्सपर्ट थे तीर चलाने में, और सव्यसाची मतलब दोनों हाथ से तीर चला सकते हैं अर्जुन, लेफ्ट भुजाओं से भी दुश्मनों को हफा देते थे, पसीना निकाल देते थे. तो तीर चलाने में एक्सपर्ट हो दोनों हाथों से, जैसे हम लोग दोनों हाथों से, कुछ लोग होते हैं दोनों हाथों से खाने में एक्सपर्ट कुछ काम से हाथ से शोभा देता है. अर्जुन दोनों हाथों में तीर चलाने में एक्सपर्ट, इसलिए सव्यसाची कहा वहां पर टीका हुआ. तो तीर चलाने एक्सपर्ट लिखे प्रभुपाद जी, सव्यसाची का सीधा है. तो सव्य यहां पर मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो शब्द जहां है वहां से पकड़ना है उसका अर्थ, कि बाएं हाथ से भी तीर चलाने में एक्सपर्ट है, मतलब सव्य सव्यसाची. तो भुजे सव्य, कृष्णा अपनी बाई भुजाओं में वेणु पकड़ते हैं, ऐसे तो दोनों हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन जो वेणु रखी जाती है, आप समझ इस तरफ है ना, बाकी बिहारी देखे है ना, तो ऊपरी हाथ तो इसमें होता है, आधार किस हाथ का है वेणु, ऐसे नहीं ना, आप समझ सकते हो. लेफ्ट हैंड आधार बांसुरी को, आधार बाई भुजा का है श्याम सुंदर की, और ऊपर से भी पकड़े हैं जब बजाते हुए, तो दोनों हाथ लगे हैं, लेकिन ऐसे कृष्ण कभी कभी एक हाथ से भी कर सकते हैं. कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम, कृष्ण क्या नहीं कर सकते, वो तो सर्वज्ञ है, तो कर सकते हैं, लेकिन एक हाथ से भी कभी कभी बजाते, और ऐसे बजाया जाए दोनों हाथ पर, फिर भी बांसुरी का आधार कहां माना जाएगा, बाएं हाथ. तो वे जगन्नाथ जिसके बाएं हाथ में वेणु है, ये अनुवाद हुआ. भुजे सव्य वेणु, जिसकी बाएं भुजा में वेणु विराजमान है, ये भगवान का मूल श्रृंगार है. वृंदावन के कई भक्त ऐसे जो बिना वेणु के दर्शन नहीं करते कृष्ण का, बांसुरी है तभी, बिना बांसुरी के बांके बिहारी तुम चाहिए नहीं हमको, बोलो. एक भाव, ये सिद्धांत है, भाव होता है अपने अपने, कि जब मुरली अधर धर, और ये लिखा है आचार्यों ने हमारे भजन में गदाधर पंडित में, श्याम सुंदर दर्शन तब करेंगे जब आप मुरली आते हैं, हमारो मुरली वालो श्याम. कई कई आचार्यों ने इस तरह का भाव दिया है, क्योंकि वंशी प्रिय सखी, ब्रह्मा जी ने भी तो इसको भूला नहीं ना. वृंदावन में सबसे जो भी लीलाएं होती है इसका आधार भी वंशी है, वेणु से ही होता है सब काम. और मधुसूदन सरस्वती कट्टर अद्वैतवादी शंकर मत के, जब काशी में हजारों शिष्यों के सन्यासी के गुरु थे, लेकिन ब्रज में बांके बिहारी के दर्शन को जाते थे वे भी, लेकिन अद्वैत मत था ना, इसलिए बांके बिहारी के बाहर जो भी वैष्णव मिलता था ना उसका माथा खाते थे तर्क वितर्क, क्योंकि ब्रह्म का ही भेजे में घुसा हुआ था. लेकिन एक भगत मिला उसको, मधुसूदन जी को, सरस्वती को, बड़े प्रकांड विद्वान, गीता पर भी टीका लिखी, भक्ति रसायन बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है उसने, संस्कृत में है सब. क्या हुआ, वो वैष्णव को कहे, क्योंकि वो शास्त्रों के तर्क बोल के हरा देते थे सामने वाले को, तो एक वैष्णव ने उसको कहा कि देखिए मधुसूदन महाराज, आप कहते कि सब ब्रह्म है, हाँ सब ब्रह्म है, तो आप भी ब्रह्म है, ब्रह्म है, तो सामने वाला जिसको आप प्रश्न पूछ रहे हरा रहे वो भी ब्रह्म है, तो फिर आप कैसे ब्रह्म है, कि ब्रह्म से ही ब्रह्म को हरा कर आप भी ब्रह्म प्रसन्न हो रहे हो. ब्रह्म है तो समान होने चाहिए ना, एक ब्रह्म जीतता है दूसरा ब्रह्म, मतलब एक ब्रह्म ज्यादा शक्ति वाला, एक ब्रह्म ये तुम्हारा ब्रह्म है उसको क्लियर किया, अगर सब ब्रह्म है तो एक ब्रह्म बलवान और एक ब्रह्म दुखी होता है, जबकि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा होना चाहिए ना, तो ब्रह्म भूत दुखात्मा क्यों है बिना प्रसाद के, ब्रह्म है तो किस तरह ब्रह्म है, और इसका माथा घुमा, ब्रह्म से ब्रह्म को हराकर ही मैं प्रसन्न हो रहा हूं. सीधा कहा इसने कि ये जो ब्रह्म है ना, वदन्ति तत्तत् विदस्तत्वम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, और ये भगवान श्याम सुंदर बांके बिहारी प्रकट है यहां, और जितनी भी विद्या है ना, विद्या वधु जीवनम, उनके नाम का कीर्तन करना है. क्या होगा कीर्तन से, जिसके नाम का कीर्तन करोगे वही रूप तुम्हारे सामने होगा, और उसी रूप में अगर मन लगाओगे तो वो लीला सामने होगी, और वो लीला जहां होती है उस धाम को तुम पा जाओगे. और बात हृदय में घुस गई, धस गई, छोड़ा ब्रह्मास्मि को और जपने लगे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। और इतना प्रेम से जपा कि यमुना के तट पर साक्षात भगवान बांके बिहारी ने दर्शन दिया इनको। अब तो प्रेमी हो गए, दीवाने हो गए। अब जब काशी में गए तो उनके चेले लोग, जब शिष्य सन्यासी लोग प्रतप्रात गुरु जी आए, गुरु जी क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण ढूंढ रहे हैं, बस गुरु जी तो भाव में ढूंढे ढूंढे। बोले क्या है गुरु जी, वृंदावन में कुछ चक्कर कोई भेजा खराब कर दिया, कोई मंत्र तंत्र मार दिया क्या? क्योंकि ये लोग तो ब्रह्मास्त्र सिखा के गए थे और अब गुरु जी ब्रह्मास्त्र नहीं कर रहे हैं और गुरु जी जम रहे हैं हरिगुण गा रहे हैं, क्या हो? कौन है परम तत्व आपके विशेष आपके ज्ञान के अनुसार? क्योंकि लोहा मानते थे सब लोग, वेद को संपूर्ण वेद और वेदांत सूत्र को पी गए थे घोलकर ये मधुसूदन तर्क वितर्क के साथ, तभी तो हजारों सन्यासियों के गुरु थे वो। लेकिन वो सब चेले लोग पूछ रहे, गुरु महाराज ठीक है ना, कोई मंत्र तंत्र तो ऊझा बुझा बोला है कि क्या क्या खिला दिया पिला दिया ब्रजवालों? कृपया निर्णय कीजिए, हम आपके पीछे हैं आपकी परंपरा में, हमें क्या करना है? कौन है परम तत्व? हम लोग तो ब्रह्म ब्रह्म कर रहे। तब उसने कहा, वंशी विभू शित करा नवनीर दाभा। जिसके करार कर कमल में क्या है, वंशी क्या कर रही है, विभूषितम। जिसके कर कमल में बांसुरी विभूषित है, यही श्लोक गाया उसने, वंशी विभूषित करा नव नीर दाबा। जो घनश्याम वर्ण के है, नए नए नीर बादल जिसमें भरे हो, पानी नीर भरा आभा उसके शरीर की, पीतांबरा अरुण बिंब भला धरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। फिर नाम भी रख दिया, विंसिंगार आभूषण वर्णन करने के बाद क्या, कृष्ण है वो और कृष्णा परम, उससे परम कोई तत्व है अहम मैं जानता, और कोई जानते हो तो जानते हो। ब्रह्मा जी की बात समझ में आ गई, ईश्वर परम मूल तक पहुंच ही गए। और फिर उन्होंने भक्ति रसायन ग्रंथ लिखा, बड़ा सुंदर है संस्कृत में मधुसूदन। फिर गीता पर भी भक्ति भाव वाली टीका लिखी, नहीं तो पहले तत्व तत्व में घूम रहे थे। तो ये वंशी कृष्ण का रूप सौंदर्य सुधा ही ऐसा है कि बड़े बड़े आत्मा रामश्च मुनि निर्ग्रंथा पीरुक्र में, बड़े बड़े आत्माराम मुनि को के मन को भी खींच लेते हैं इनके गुण। और इसी को श्रील प्रभुपाद को भी जब पूछा जाता था परम तत्व तो भगवान को देखिए इनका वर्णन क्या है, हैदराबाद में एक व्यक्ति पूछा प्रभुपाद को, इसकोन का प्रथम मंदिर प्रभुपाद हैदराबाद में बनाया। फिर माया, फिर तो तीन प्रभुपाद की इच्छा थी भव्य और हुई पूरी की भगवान ने। भारत के तीन प्रमुख जो जानते ही आप सब, जुहू और मायापुर और श्री धाम वृंदावन। तो प्रभुपाद को कौन है भगवान, यही श्लोक कहते थे, वेणु क्वणंतम अरविंद दलायताक्षं बरहावतंस समस्तांबुल सुंदरंगं कंदर्प कोटिकमनी विशेष शोभं गोविंदमादि पुरुषं। वो भगवान जिसके वेणु क्वणंत अरविंद दलाय, जिसकी कमल जैसे आंखें है और जो वेणु को क्वणंत बजाते रहते हैं, यही तो सिंगार दर्शन का श्लोक है ना ब्रह्मांड। तो यहां पर याद करना चाहिए, भुजे सव्य वेणु, भगवान श्री कृष्ण की लीला में मूल वस्तु वेणु। और वृंदावन की जो गोपियां है अभिरी नारिया, देखो ये दो श्लोक जगन्नाथ अष्टकम के वृंदावन की लीला के हैं। फिर जगन्नाथ जी जो अर्चक के रूप में दारू ब्रह्म के रूप में जो लीला करेंगे रथारूढ़ो फिरतिया वो सब उसमें है, लेकिन ये दो मूल जगन्नाथ है कौन इसका वर्णन दिया, इसलिए ब्रज लीला चलेगी दो दिन। फिर जगन्नाथ पुरी की लीला आए अष्टकम के अंतर्गत गोपिया, जैसे राजा रानी प्रमुख शिरमोर गोपी और अन्य उनके साथ ललिता विशाखा करोड़ों गोपिया। लेकिन ये गोपिया इन वेणों से प्रेम ईर्षा में जलती भी है, प्रेम ईर्षा है ये प्राकृत। यहां जो ईर्षा है रजस तमस ऐसी नहीं, वृंदावन में तो रजस तमस है ही नहीं, परस्तस्मास्तु भावन्यो व्यक्ता व्यक्त सनातन, गीता के अनुसार वहां ये सब है नहीं प्राकृत, वो तो चिंता मणि प्रकर्ष कल्प दिव्य धाम है, लेकिन वहां प्रेम है और प्रेम समुद्र की ही तरंग है, मान क्रोध ईर्ष्या। रूप गोस्वामी को महाप्रभु जी ने वर्णन किया मध्य लीला के 19वें अध्याय, भाव अनुभाव प्रभाव सब बहुत बड़ा ऊंचा वर्णन। तो वहां वर्णन है प्रेम के भी उपवाद में मान है, क्रोध है, ईर्ष्या है, वो प्रेम होता है उस रूप में प्रकट होता है, लेकिन दिव्य है इस संसार वाला नहीं, इसको आप समझिए फिर सुनिए। और इसीलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु इसका आस्वादन करते थे, गंभीरा श्री गौरांग आंखों से नेत्र बहाते हुए, नेत्रों से अश्रु प्रेमाश्रु बहाते हुए रामानंद राय के गले को पकड़ लेते थे, जैसे राजा रानी ललिता जी को अखबार में भर लेती, गोप्य की मादयम कुशल स्वेणो दामोदर धर सुदा रज गोपिका नाम, वेणु की 10:21-9 नंबर श्लोक, शायद हमने पिछली बार इसकी व्याख्या गोलोक धाम में रात्रि के सत्र में की थी, भगवान के वेणु का माधुरी, क्योंकि रूप सनातन गोस्वामी ने लिखा बृहद भागवतम ऋत में चतुर्धा माधुरी ब्रजे व विरासित, चार प्रकार की जो माधुरिया है, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, ये एक्स्ट्रा है तो जो केवल वृंदावन में थी, द्वारकाधीश कृष्ण वेणु नहीं बजाते द्वारिका में, वहां शब्द चक्र सुदर्शन धारी है, वहां उस रस में शौर्य आवेश है, लेकिन यहाँ नंद नंदन आवेश है श्री कृष्ण का वृंदावन में पूर्णतम प्रकाश। तो उसके अंतर्गत इस लीला को तो स्वयं राधा भाव में, क्योंकि सनातन गोस्वामी कहते गोपियां क्या सोचती थी कि अयम वेणु जन्मना सौभाग्यम न तो गोपी जन्मना। देखो जिस भक्त ने अगर भगवान के प्रति प्रेम होना तो उसका एक स्वभाव है कि वो अपने को हीन मानता है और दूसरों में प्रेम ज्यादा देखता है। प्रेमे रस स्वभाव जहां प्रेमे रस बंद से ही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध, चेतन जलिता प्रेम का एक स्वभाव है प्रेमी का कि वो यही मानता है कि मुझ में प्रेम नहीं, और अन्य में नहीं होते हुए क्या सोचता है कि इसमें तो प्रेम से भरा है। इसी से हमारा पता चलता है, हमको तो लगता है बस जितना प्रेम से तो मारा मारे, बाकी तो बड़ा अपराधी थे, शुद्ध भगत मुझ चू बस, जबकि जितने शुद्ध भक्त है उनका आप रियलाइज उनका वर्ण सुनो, वो देखते कि हमने प्रेम का गंध भी नहीं ऐसा उसको अनुभव, केवल ये क्या कहते हैं विनम्रता प्रदर्शन करने के लिए नहीं बोला गया ये हमारे आचार्यों के द्वारा, वो उसका वास्तविक हृदय का वही भाव था। हम लोग कभी बोलते हैं लेकिन वो तो एक एक फॉर्मेलिटी, अंदर से तो हाँ उनका काम अंदर से ये मूड होता है, बाहर से तो प्रभु जी ये इस तरह का ड्रामा नहीं है यहाँ जो हमारे कविराज जी लिख रहे हैं, वो वास्तव में ऐसा है, क्योंकि जहां सत्य प्रेम हो उस प्रेम का यही स्वभाव, ये ऐसे ही मानता है। इसलिए राधा रानी की गोपियां तो प्रेम के समुद्र भंडार है, लेकिन वो प्रेम में ऐसा सोच रही कि हम में प्रेम है नहीं, और इसलिए इस तरह का बात बोलती कि हमारा गोपी जन्म बेकार है, अच्छा होता कि वेणु बनती, कम से कम मुरली बनती, कि श्याम सुंदर का संत गिनता एक गोपी बनकर मर रही है, और इसको गोपीनाथ बोला किसने, किसने बोला गोपीनाथ, इसका नाम गोपीनाथ होना ही नहीं चाहिए, इसका नाम होना चाहिए वेणुनाथ बांसुरीनाथ, फालतू में नाम रखे गोपी के साथ तो रहते नहीं, और नाम है गोपी, नाम कौन रखा इसका नाम, इसको लाओ पकड़ के लाओ। कहते हैं भाव में कि इसका नाम जो भी गोपीनाथ रखा उसको ढूंढो से, क्योंकि फालतू नाम है, उसको वेणुनाथ बोलो तो ठीक है, क्योंकि हमेशा साथ में कौन होता है, और हम लोग उसके विरह, ये देखो ये प्रेम प्रेम ईर्षा में इस तरह का भाव निकलता है। और यहां पर क्या है, भुजे सव्य वेणु, वेणु देखो प्रभु पुरुष वाचक शब्द है, मुरली स्त्रीलिंग शब्द है, वेणु समझ आया था ना, वेणु मुरली बांसुरी ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, लेकिन वेणु तो पुरुष जाति का शब्द हो गया ना, ऐसे मान्य तो जाति भी है लेकिन पुरुष जाति माना जाता, तो उसी को लेकर कहते हैं वेणु दृष्ट पुरुष हैया पुरुष अधर पिया गोपी गण जानाई निज पान। देखो ये पुरुष होकर पुरुष का आदर पी रहा है, ये प्रतिक्रिया कर रहा है, वेणु पुरुष है और कृष्ण भी, तो उसके आधार पर इसका हक नहीं, और वो पीना उसको रोज आनंद उसको मूड भी नहीं, लेकिन हम लोग को जलाने के लिए, हम लोग को दिखाने के लिए पी रहा है कि देखो हे गोपी सुना गोपी गान पीबे तुम्हारा धन, मैं तुम्हारा धन, कृष्ण तुम्हारा है ना, बाकी बिहारी उसका आदर उसका प्रेम भक्ति तुम्हारा धन है ना, मैं पीती हूँ। ऐ सुना गोपी गान भले पीबू तुम्हारा धन, तुम्हारे भी था क्या अभिमान, तुमको अभिमान है तो रोको, अपने को बहुत महान समझती हो तो छोड़ो, श्याम सुंदर बंसी छोड़ते थे। तो राधा रानी इस तरह भाई स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे गंभीराम, ये बंगला में ये मूल श्लोक का संस्कृत का बंगला करते हुए आस्वादन करते हुए राधा भाव में, और यही वर्णन है। अरे सखी ये कृष्ण को नाचना, जो कृष्ण की सेवा के लिए उनके दर्शन के लिए हम लोग मरती है, और ये वेणु है कि उससे सेवा लेती, हमारे भगवान गिरिराज पकड़ के भी सीधे खड़े थे लेकिन मुरली बजाते हुए इतने टेढ़े हो गए बेचारे, थोड़ी महंगा गिरिराज से भी भारी बन गए ना, भगवान गिरिराज पकड़े तो भी कुछ, अरे वेणु बजाते हुए श्याम सुंदर ऐसे हो ही जाते थे, हरी मुरली हरी को नाच नचा सूरदास ने गाया, भगवान तो ऐसे ही त्रिभुवन हो जाते थे, लेकिन गोप राधा रानी इस भाव में कह रही थी देखो ये सब मुरली ने कराया, हमारे भगवान को बैंड कर दिया त्रिभुवन बना दिया, हरि को भी जिसकी सेवा दर्शन करना चाहिए, और मुरली क्या कर रही है इस तरह परेशान कर रही है हमारे प्रभु को, पर प्रभु को भी क्या आता था, छोड़ते नहीं इसको, हमको छोड़ दिए और मुरली को उसको साथ में लेके घूम रहे हैं। कथा नहीं चेतन महाप्रभु कहते हैं कौन तीर्थ कौन तप कौन सिद्ध मंत्र जप यही वेणु कैला जन्मांतर। सखी कौन सा तप किया इस वेणु ने, कौन से तीर्थ यात्रा में गई, ब्रजमंडल किया क्या, परिक्रमा किधर, ये वेणु को इतना बड़ा सौभाग्य मिला, कौन तीर्थ कौन तप कौन सिद्ध कौन सा जप जपी है ये वेणु जन्मांतरे, पिछले जन्म में यही जन्म में पता नहीं कौन सा तप किया है, क्यों हे न कृष्ण धर सुधा जे अमृतेर कर मुधा यार आशाय गोपी धरे प्राण। जिस आशा के लिए कृष्ण के अधर जो अमृत को भी फीका करने वाला वो अमृत अधरा अमृत जिसके लिए गोपी प्राण टिका के बैठी है और उसको ये पी रही, ये वेणु अयोग्य स्थावर पुरुष जाति, ये तो ये अयोग्य है उसमें भी स्थावर लकड़ा है, अगर जिंदा भी एक तो पुरुष जाति है उसमें भी लकड़ी स्थावर है, स्थावर जंगम समझते ना, स्थावर जो स्थिर हो उसमें भी पुरुष जाति, यही सुधा सदा करे पान, और ये कृष्ण अधर सुधा को पीती रहती और हम लोग देखती रहती है, मानो डाकू की तरह के, जैसे डाकू होता है ना गंदी का निकालो सबके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही डाकू बनी हुई है मुरली सखी कि हमारे सामने हमारा धन ही लूट रही है और हम कुछ कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत ब्रज के संतों ने इस पर लिखा मुरली के ऊपर, मृदु ओष्ट की शैया बिछा करके नित्य सुख पूर्वक सुलाते हैं क्यों, ये मधुर ओठों की शैया बनाकर और सुख से मुरली को कृष्ण सुलाते हैं, लोरिया गाते हैं, और माता यशोदा ने कृष्ण को या नाक में मोती पहनाया है, आप पढ़ेंगे ना चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को साक्षी गोपाल की कथा कहते हैं, साक्षी गोपाल की कथा है ना, ब्राह्मण और आए साक्षी बन के, उसके बाद वो फिर राजा आए कटक, फिर वो मंदिर बनवाए कि हमारे गांव में हमारे शहर में भगवान आए, हमारा सौभाग्य है, बड़ा महोत्सव हुआ, फिर आनंद मंगल भोज भात सब हुआ, तो रानी भी आई, रानी आई तो सोची अरे सांवरे सूरत पर इतने मोहित हो गई बांके बिहारी साक्षी गोपाल पर कि बोले सब उतार देना, तो जो जो पहनी थी कंगन जो तो रानी थी तो सारा सोना गहना पहने सब उतार के साक्षी गोपाल के चरणों में न्योछावर कर दिया, कुंडल सब निकाल दिया, हार बार सब, बोले सब तुम्हारा, तुम्हारी दासी हूं केवल रूप से ही, फिर खुश थी, दान देके भी खुश कम लोग होते हैं, अरे भारत देव है जन्माष्टमी में देव है क्यों चे भूलती दुखी नहीं जाता, लेकिन श्रद्धा या श्रद्धा होनी चाहिए, रानी बड़ी खुश थी, लेकिन रात्रि में सोती थी तो एक दुख हुआ उसको, क्या? बोले सब उतार दी, लेकिन नाक की जो नथनी थी ना वो रह गई थी। उसको दुख यह था कि ये मैं रख ली, उल्टा कुत्ता हमारी तरह नहीं कि बोले ये नाक की नथनी मैं गोपाल को नहीं दे आई, लेकिन मैं दे दी भी कैसे, क्योंकि उनके नाक में तो छिद्र है, हॉल है ना, भले रहे, मतलब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि नूपुर पहनाया जाता है कमर में, पुजारी सब पहनाएगा उसको, लेकिन नाक में तो ये मैं दूंगी तो भी कोई यूज होने वाला नहीं था। ऐसे ही सो गए भगवान कृष्ण स्वप्न में आए। नित्यानंद प्रभु कथा कह रहे, आप पढ़िएगा चैतन्य चरितमानस, शायद नौवा अध्याय होगा, पूरी दसवें अध्याय में तो पूरी पहुंच जाते हैं लटार नाला, तो उसके पहले महाप्रभु साक्षी गोपाल होते हैं, फिर पूरी में एंटर होते हैं। तो कृष्ण ने कहा देखो रानी, मैं जब छोटा था ना तो मेरी माँ ने मेरे संस्कार किए थे कर्णवेद, और नाक भी छेदन किया था, तुम जाके देखो नाक में छिद्र है और ये नथनी पहनाओ, मेरे को अच्छा लगता है, शौकीन से ऐसे ही भगवान पाने जाए तो उदास दर से परे हुए ऐसे भगवान नहीं चाहिए, एकदम रसिक। और ये रानी रात्रि में जैसे स्वप्न खत्म हुआ जागी, अपने स्वामी से महाराज से कही, और सुबह उठकर जाकर देखते तो वास्तव में श्याम सुंदर साक्षी गोपाल के नाक में छिद्र बन गया था। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात, ये प्रतिमा नहीं है भगवान, मनोरथ हृदय से हो तो पूरे होते हैं। नवनासिका, नव भगवान कृष्ण के नाक की भी बड़ी गुण गाए गए हैं, क्योंकि जे कहे चाहिए नाक अच्छा नहीं है जो भी है नाक उसी से तो सब सुंदरता है या नहीं है, तो कृष्ण के नासिका के भी अपने गुण हमारे विद्वानों ने गाए हैं, लेकिन नव नासिका का मोती छिद्र धरा, छत्र धरा, यहाँ पर मोती है तो जब मुरली यहाँ होगी, मोती यहाँ है तो ये तो जैसे रानी हो उसके ऊपर कोई छत्र लगाया हो। ये राधा रानी कहती है कि सखी मृदु ओष्ठ की शैया, कुछ लोग डंगलों के गदले बनाते हैं, कुछ रुई के बनवाते हैं, क्या क्या निकला है, लेकिन कृष्ण के अर्धरामृत जैसा तकिया कहाँ मिले, इससे नरम और इससे मधुर, और इसको ये मिला मुरली महारानी, और छत्र किसका मिला, कृष्ण का मोती मोक्तिकम, उसमें भी है ना उसलोक जो प्रार्थना की जाती है भागवत से पहले, तो मोक्तिकम चंदन लगाया हुआ शरीर पर, वेष्टितम गोपाल चूड़ाम, नासाग्रे वर मोक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम, तो उसमें भी नासाग्रे नाक के अग्रभाग में मोती भगवान को है। और आज भी इस्कान के भी भक्त लोग जो पेंटर बनाते हैं, जो उसमें आप देखे होंगे इस तरह का बनाते हैं, पेंटिंग चित्रों में बनाया जाता है, सत्य है शास्त्र के अनुसार। ओके, तो इतना ही नहीं, अलकावली पंख लगाते हैं क्यों, और जब हवा बहती है तो कृष्ण के बड़े बाल है सुंदर कर्ली और स्निग्ध, तो पगड़ी पहने तो कुछ बाल यहाँ लटाई गई है, या मुकुट पहनते तो भी बाल तो बिखरे हैं साइड में, तो पवन हवा से चलता है, ऐसा लगता है कि मुरली को पंखा मार रहे हैं, तो कितनी सेवा हो रही है देखो ये, और हम लोग सखी मर रही है इसको, ये कितना लाभ ले रही है हमारे जीवन, ऊपर से पंखा करवा रही है, और भगवान मानो बजाते जैसे लगता है कि इनके चरण की मसाज हो। हरे कृष्ण कभी कर से तजते, कभी कभी कर से भगवान मुरली छोड़ लेते हैं, मतलब हाथों से, तो कहां रखते हैं, कटी काछनी में, क्यों, तो फिर कमर से चिपका देते हैं, ये मुरली छोड़ती नहीं हमारे पीर, कर से छोड़ा मुंह से छोड़ा तो कमर से चिपका देते, इतना ही सह लेती हम, ये सब हो जाता एक बार हम सह लेती, लेकिन इतना क्यों अपनाते हैं कि अधरामृत भोग लगाते हैं। और इस मुरली महारानी के लिए राजभोग क्या है, कृष्ण का अधर रस, ये कम से कम उपवास कराते ना तो पसंद आ जाता, भले इतनी सेवा हो भोग नहीं मिलना चाहिए, भोग भी लग रहा है, और सबसे जिसको 108 1008 द्वादश राजभोग लगते हैं वे भगवान स्वयं उसको भोग लगा रहा है, कौन सी आयकर सबसे ऊंचा, अपना अधर। तब मुरली भी जवाब देती है, जब सखिया इस तरह पूछती है तो मुरली नहीं देती, वो भगवान देते हैं मुरली से कि सुनो ऐसे ही सब नहीं मिला, जब बांसुरी वन के रूप में थी, जब मैं पहले बांस थी ना, तो वन वन खूब जलाई गई। अरे भाई जली हूं मैं बहुत, बांस में आग लगती है ना, आप देखे होंगे ना। मैं अपना घर परिवार छोड़ी हूं, तुम छोड़ी हो क्या? सत्संग में भी एक घंटा नहीं छोड़ती मोबाइल। और मैं अपने सबको, मेरा वास, मेरे पिता है, मेरा कुल, बचपन में छोड़ दिया, आला लीला वास लिया नहीं बड़ा हमारे मीरा जी ने। मतलब बांसुरी बनाने से पहले वो ऐसा नहीं सूख जाए बांस और फिर तब हो जाए, उसको पहले ट्रीटमेंट करने के लिए पहले काटना पड़ता है। और क्या होता था, सिर ऊपर वर्षा की धारा सही, इतना भारी वर्षा होता है, कभी छत्र नहीं लिया। और तुम तो वर्षा है तो मंगला में आना ही नहीं, बहाना दूंगे। हम लोग खड़े रहते थे वहां पर, और शीत समीर चलाई, कभी गर्म लू चलती है, कभी ठंडी लू चलती है। इतना ही नहीं, तीव्र कुठार से काटी गई। और फिर एक दिन एक व्यक्ति आता है, हमें क्या करता है, काट देता है, और फिर खुली छाती में छिद्र लगाए, और फिर गरम गरम लोहे के सलिए से छाती में, और अंदर का सारा निकाल दिया जाए। अहम अस्मि के भाव से शून्य हुई, तब माधव ने अपनाई गए, अंदर से मैं खाली हो गई। अहम कृष्ण से दासो अस्मि, अब मैं कुछ नहीं हूं, सर्व उपाधि। मुरली खाली होती ना अंदर से, आपने भेरा से जगह क्या से भगवान का, ये साधना के रूप में है, ये ऐसे तो लीला है, लेकिन हमारे लिए साधना समझ में आनी चाहिए कि कुछ नहीं हम, क्या है कृष्ण के, हम नहीं है कुछ खाली। तब माधव ने हमें अपना, ऐसे ही हमको नहीं मिला। राधारानी को मुरली मानो जवाब देती है कि भाई हम ऐसा पाई है तो ऐसा कुछ हमने किया है, आप भी करो, आपको भी माधव अपनाएंगे, होना चाहिए। तो इस तरह कभी ईर्ष्या में राधा रानी मुरली वेणु के ऊपर विवाद तर्क करती, लेकिन फिर कभी अनुकूल मूड में हो प्रिया जी तो कहती है कि नहीं नहीं सखी, वास्तव में वेणु नहीं तो हमें रास रस दिया ना, क्योंकि निमंत्रण कहां से आता, किस माध्यम से, वेणु से। तो फिर कभी कभी अनुकूल करे, वाह ये तो हमारी सबसे अच्छी सखी है, क्योंकि जो रास निमंत्रण ठाकुर जी भेजेंगे किसके किसके द्वारा, वेणु के द्वारा ही तो बेचते हैं, और रास में भी वेणु ही बेचता है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम प्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस, शरद रास के वर्णन के आगे यही श्लोक। तो फिर कभी अनुकूल भाव भी होता है, और तब राजा रानी वेणु को आशीर्वाद देती है। रूप गोस्वामी ने पद्यावली में लिखा है, अछिद्रम पूरयन हृदयम प्रेम पूर्णम, हे मुरली मैं तुमको हृदय से आशीर्वाद देते, तुम्हारे अंदर जो छिद्र है ना वो सब कृष्ण प्रेम रस से पूरे हो जाए। और तो होंगे ही, कृष्ण प्रेम रस डालते ही है उसमें, और क्या होगा, मौखर्यम युक्तम, तुम्हारे अंदर जो मुख से जो स्वर निकले ना वो सबसे मधुर हो और सबसे श्रेष्ठ हो, ये होना चाहिए वैष्णव, जिसकी वाणी में वेद का वैभव हो और जिसके स्वर में कोकिल का माधुर्य हो, ऐसा व्यक्ति खींच लेता है कृष्ण के चरणों में सबको, साधन रह नहीं पाते, बड़े बड़े पत्थर दिल भी पिघलते हैं, क्योंकि कृष्ण की कथा है ना, कृष्ण का नाम है मधुराधिपते, तो उसको बोलने कहने सुनने वाला भी उसी स्तर में आएगा अगर अपराध ना करे, ईर्ष्या ना करे, फिर कोई रह नहीं पाएगा उसको, फिर उसके शब्द शब्द में रस नहीं पाएगा, लोलुप हो जाते, भ्रमर बन जाएंगे, भोगी भी क्या बन जाएंगे, प्रेमी बन जाएंगे। इसी को रूप गोस्वामी ने कहा, तत्र लोल्यम, कहीं मिलता है ऐसा रति तो ले लो, कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम, तो कहां मिलता है, जैसी रति उसकी मति उसके पास है, ऐसे प्रेमी की कथा से मिलता है। हमको कथा में रुचि नहीं, लेकिन उनकी कथा है ऐसे कहने की पवित्र, की हमें रुचि हो जाती है, जिसको भागवत में लिखा है वासुदेव कथा रुचि, कितना तप करना पड़ता है, श्याम महल से भी है, सार है, पर वो किसी प्रेमी रुचि भगत के संग में ऐसे ही मिल जाएगी, कितना बड़ा दान है ये। इसीलिए भगवान ने माना, और गोपियों के इस वाक्य को सारे ऋषियों ने माना, भूवि गृणंती ते भूरिदाजना, भगवत कथा को जो गाता है वो त्रिभुवन में सबसे बड़ा दान है, इस अस्थि स्तर पर दान। और ये आशीर्वाद किससे मिला, मुरली का, राधा रानी से, क्योंकि भक्ति की मूल तो राधा रानी, भंडार वहीं से मिलेगा ना, इस तरह का वैभव हृदय से दिया, क्योंकि अपने प्रियतम का संदेश दे रही हो ना तुम, जो कृष्ण की कथा के संदेश राधा रानी उसे देती है, ये सब धन वैभव। मितम अस्तु गुरुत्वम अस्तु, हे कृष्ण प्रिय सदास्ते आशीषम, मैं तुमको सदैव आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा यश बढ़े। और कृष्ण भी, क्योंकि कभी कभी राधा रानी कहती थी कि ये मुरली ने जीना हराम कर दिया, क्योंकि जब चाहे तब बज जाए, समझना कभी भी बजा देते थे, और बजने पर इनका कोई होश ठिकाने रहता नहीं, कोई काम होता नहीं, तो होता क्या, इसलिए कभी कभी कहते थे कि मत बजाओ उसे। ऐसे बहुत मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन सब क्या है प्रेम। ये प्रेम समुद्र के ही वेव्स है, कभी मान कभी ईर्ष्या कभी क्रोध, लेकिन इसमें रस बढ़ता है। बंसी चोरी लीला रूप गोस्वामी ने लिखी है पद्यावली में, राधा रानी कहती है कि देखो कृष्ण, तुम्हारी बंसी ने हमारी लज्जा को चुरा लिया, हमारे वेद लोक मर्यादा को भी चुरा लिया, अब कहीं अवसर मिला ना तो इसको चुरा के यमुना जी में डाल देगा। भगवान के हे मेरे धन पर नजर मत मारो, बंसी प्रिय सखी है मेरी, बोले एक दिन हाथ में हो जाए ना ऐसे दांत पिसकी प्रिया जी कहते, तो इसको यमुना में समाधि दे दूंगी, ताकि सारा झंझट खत्म। तो भगवान भी के पीताम्बर में लपेटे छुपा के रखते हैं। इवन सुंदर जी ने लिखा कि उद्धव जी को भी जब कृष्ण ने भेजा ना, तो नंद यशोदा को मैसेज देते हुए कहा कि यशोदा जी को कहना मेरी मुरली संभाले, मत ले जाए चुराए राधिका, क्योंकि राधिका चुराती है इसको, राधा ने चुराती है। तो रूप गोस्वामी ने लीला लिखा, क्या हुआ एक दिन कृष्ण कदम के नीचे सोए थे, तो सखिया जल भरने आई थी यमुना के तट, तो ये बात को तो कृष्ण कभी डरे रहते थे, ये कभी भी चुर सकते हैं। तो गैया चल रही थी, तो भगवान ने मुरली को कमर में कस में पीताम्बर में लपेटा, और फिर भी उसके ऊपर पीताम्बर डाले जैसे दिखे नहीं, और ऐसे सोए। तब राधा रानी ललिता विशाखा ने देखा कि हाँ है इधर ये चोर। नीचावसादत चरणयो नुपुरम मुकयंती, राधा रानी ने नुपुर पहना, तो क्या किया ललिता विशाखा, कोई आवाज नहीं, भगवान सो रहे थे कि नाटक कर रहे थे पता नहीं, क्योंकि ये सोते तो है नहीं, लेकिन लीला माधुरी है, योग माया की व्यवस्था से सुला दिया होगा, लीला रस लेने की। और ललित राधा रानी क्या कहते, अपने पल्लू को चोली को थोड़ा ऊपर उठाते और धीमे पद से, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि चरणयो नूपुरम मुकयंती, क्योंकि चलेगी तो नूपुर तो बजेगा ना, इसलिए ध्यान से ऐसे हल्के हल्के जैसे स्त्रियां जा रही है श्याम सुंदर के पास। तब तक क्या हुआ, थोड़ा आवाज आया, त्रित्वा त्रित्वा कनक कलयान्युत शिपंतो भुजंते, वो कंगन पहनी थी ना, तो खनखन थोड़ा हुआ है, तो इसको भुजा मतलब इधर चढ़ा दिया, खनखन नहीं होना चाहिए, धीरे से एकदम वहीं खड़ी रहकर लगा दिया एकदम। कनक कन सोने के थे भाई, कलयान अपने कल्याण पहने थे, तो चढ़ा दिया राधा रानी ने, और फिर एकदम धीमे धीमे पांव से वहां पर श्याम सुंदर के पास जाते ही पद्यावली में रूप जी लिखते हैं रूप गोस्वामी हमारे, कि ध्यान से देखा उसको डाउट है कि कहीं जाग तो नहीं रहे, लेकिन देखते हैं ध्यान से, तो कैसे मुदा अक्षण राधा रानी बड़े बड़े नेत्रों से देख रही है, और कृष्ण के नयन कमल बंद है, लेकिन मुख पर मुस्कान है, अधरम मधुरम हसित, क्योंकि कृष्ण सोए हुए भी हंसते हैं, तो मुस्कान होने पर डाउट होता है कि जाग नहीं रहा, क्योंकि भक्ति आप समझ सकते होंगे कि जब नाटक में देखो तो ऐसे थोड़ी सी हंसी आ जाती है, अगर नाटक होगा तो आप लोग अपने पदर से समझ सकते हैं, तो एक बार डाउट हो रहा है, लेकिन फिर ऐसे दो तीन मिनट खड़े रहते तो हिल चाल कुछ नहीं है, नहीं है तो ऐसे ही है स्माइलिंग फेस, तो इसका ऐसे ही है, उसको विश्वास आता है। फिर चिंतावत चलती हुई वहां जाते ही क्या करती है, स्मृत्वा देखती हुई स्मरंती हरंती मुरली अंकयो माधवस्य, और धीरे से ललिता विशाखा भी कहती इशारा से, और धीरे से जाके मुरली को कटाक्ष से ऐसे स्पर्श न हो, क्योंकि बहुत सावधानी से करना था यह काम, लोग कहते कृष्ण चोर है, देखो सबसे बड़ा चोर के घर चोरी हो रहा है चोर के घर भी, और राधारानी ने बड़ी कुशलता से निकाल लिया और निकाल के सब सखियां झुंड में भागी अपने काम में मधुवन। और इधर कृष्ण जब नींद खोलते ही देखा नहीं है, धन गया, और उसको डाउट है कि यही लोग हो सकते हैं, कहने वाले तो होते नहीं इस तरह के अच्छे लोग, ये तो ऐसा करते नहीं, ये हमारे ही काम। और वहां ललिता विषय का सब जैसे कुछ बना, उसके बीच भगवान पद सुनो आपसे बोल रहे हैं, क्या हमारी मुरली आपने चुराई ना, तो राधारण के लिए कौन है, कौन है प्रभु, आप पहचान दी इसको, नहीं हम तो नहीं है, अरे मैं कृष्ण हूं, मेरी मुरली है ना जो मैं बजाता हूं, ये मुरली किसको कहते हैं, ललिता जी की मुरली किसको कहते हैं, हमें तो देखी शानी मत बनो, चोर तुम हो, मेरी मुरली तुम्हारे सिवा कोई चुरा नहीं सकता, और इसने बोला था तुम्हारी सखी ने कि चुरा की धमकी दी तो ही पकड़ा ही, बस कभी आप किसी को धमकी मत देना, दूसरा मारेगा तो उसका ही नाम आता है, ये बोला ये राधा बोली थी यही होगी तुम। तब राधा रानी कहती है कि अपने जैसे सबको समझ रखा है, चोर तुम हो, किसी को भी पूछो दुनिया में कौन है, और चोर होता है दूसरे को भी क्या समझता है, चोरी समझता, अपने जैसा समझा है हमको, हम ऋषभानु बाबा की लड़की है, कभी चोरी नहीं करती, जाओ यहां से टाइम नहीं, चलो ललिता ए सुनो सब जानती है, जान चु मुरली तुम्हारे पास है, प्रेम से कह रहा हूं हाथ जोड़ के दे दो, या मुरली बिन चैन, मुरली बिना मुझे मजा नहीं आता, इसी के बल पर गैया चलती है भाई, मुरली बजा के तो गैया को कालन होता था, इसी पर गिरिराज उठाया दे दो, अरे भाई तुम भीख मांगो प्रार्थना करो या बल चोरी करो, हमारे पास नहीं है बोला ना, होता तो देख लो हाथ खाली है सबके, होते होना चाहिए ना, भगवान को डाउट होगा कि कहीं यमुना में डाल भी दिया दिखा रहे कोई नहीं। गोविंद लीलामृत हमारा दिव्य ग्रंथ अष्टयाम लीला लिखा किसने, कबीरदास गोस्वामी, उसमें लिखा है ये नहीं, भगवान ने कहा ठीक है एक ही स्तर पर चेकिंग होगा, हाथ दिखाया जा रहा है लेकिन और भी चेकिंग होगा, क्योंकि हाथ में नहीं होता कहीं छुपाया जाता है, इसलिए कोई हिलेगा नहीं, यहां से पकड़े गए तो ले लेंगे और नहीं तो फिर आप फ्री हो, चेक आप जब चोरी नहीं की तो क्या दिक्कत है आपको तपास करने में देने में, बोले नहीं इसमें हमारी घटती है, हमको चोरी का इल्जाम तो डाल ही दिया ना, भले ना निकले शायद जंटलमैन को इस तरह चेक करना, ये चोरी से भी बदतर है ना, बोले वो तो हम छोड़ेंगे। तब ललिता के पास थी मुरली वास्तव में, उसी समय पास किया जा रहा है, कृष्ण जिसको चेक कर रहे हैं वो पीछे से इतनी होशियारी से जा रही, अंत में रूप मंजरी जो ये लीला लिख रहे उसी के पास, रूप गोस्वामी के पास चली गई वही वही मुरली, और सब सखिया नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, नहीं है। बोले नहीं है उसको साइड में हटो, क्योंकि गोलाकार में हमको गोल में घुमा रहे हैं, जिसको चेक हो रहा है वो साइड, ये रास नहीं है सरकार ने दिया तो राजा ने कहते क्या बताओ तुम्हारे पास है वो दी हाँ हाँ अरे कैसे आ गया पास का टुकड़ा, ऐसे ऐसे थड़पा थड़े आइटम लेना नहीं चाहिए हम लोग को, क्या तुम लोग पानी भरने आए कि लंगड़ा ढूंढने आए फेंको फेंको चलो चलो ऐसे, भगवान कहते ठीक है हमारा काम दे दो फिर बात करते हैं। रूप गोस्वामी कहते इस पावन लीला का जो स्मरण करेगा उसके चित्त को मन को भगवान अपना समझ कर चुरा लेंगे, मुरली चोरी की लीला लिखी गई है, तो इस तरह के अनुकूल भाव भी होते थे। हरीश्वरी ने क्या टीका लिखा है उस पर, हमारे गुरुदेव सुनाते हैं कि धराश्रितर, ये वास कहां पर उगता है, पृथ्वी धरा कहते हैं इसको, उसका आश्रय लिया मतलब धराश्रितर, लेकिन ये धराश्रित अधराश्रित हो गया कृष्ण के, देखिए संस्कृत भाषा का कमाल आप समझोगे, ये शब्द गुजराती हिंदी जैसे है, धराश्रितो अपि अधराश्रितर, और फिर रसा उद्भिज, रसा किसको कहते हैं पृथ्वी को, और पृथ्वी के रस को उद्भिज मतलब फाड़ के ये वहां ये वृक्ष निकलता है ना, मतलब तोड़ के निकलता है, तो रसा उद्भिज मतलब रसा को तोड़ फोड़ के निकला है, और क्या पाया हास्य रसम, महान रस कृष्ण मुख रस को, जबकि नहीं तो जिसने रसा को तोड़ा है वो तो दंडनीय होना चाहिए ना, लेकिन उसको जो रसा को तोड़ा है तोड़ के निकला है उसको कौन सा रस मिला, मुख्य रस, माधव के मुख का रस मिल गया, इतना ही नहीं, कुत्पत्ति, कु कहते पृथ्वी को, कुबल्यापीड, कु मतलब पृथ्वी को भी आपीड कष्ट देता था जब चलता था ना, ससुर जी ने दिया था दहेज में आती कंस को, जिसका नाम था कुबल्यापीड, जिसको कृष्ण ने मारा ना मथुरा में, तो वहां पर कु मतलब पृथ्वी में पकड़ मार ले, कुत्पत्ति मतलब पृथ्वी से निकली है, कु मतलब पृथ्वी से निकली है, और एक तरह कुत्पिता होता है कि कंडम एकदम कुत्सित है ना, अब है कुत्पत्ति मतलब कुत्पत्ति से निकला है, और क्या उत्तम वंश पूजित है, और उत्तम व्यक्ति शिव ब्रह्मा नारद सब इसके गुण गाते, वंश देखा जाए तो कुत्पत्ति होकर उत्तम वंशम, ये सब हो क्यों हो गया, यदि ईश्वरस्य तव कराश्रयस्य माधव, क्योंकि ये कृष्ण के हाथ में आ गया, जो भी कृष्ण के हाथ या चरण में आता है वो महान, कृष्ण ने कर पर लिया इसलिए धरासित हो गया, ये रसद भी मुख्य रस आ गया, ये कुत्पत्ति होते हुए भी उत्तम वंश के द्वारा पूजित हो गया, ये वेणु ये लकड़ी, क्यों, क्योंकि कृष्ण करा, क्योंकि कृष्ण के हाथ में आ गया, परम पदम भूषण भूषण, कृष्ण के अंग पर आने पर अभी आभूषण स्वयं भूषण बन जाते, भगवान जब अपना मानते हो ना कृष्ण को, रामायण को मैं याद करूं, निषाद थे ना निम्न जाति के निषाद राज, राम जी के सखा, लेकिन क्या हुआ जब भरत जी जा रहे थे ना चित्रकूट, तो वशिष्ठ साथ में थे कुल गुरु, जब निषाद से मिलन हुआ तो वशिष्ठ जी ने उसको अखबार में भर लिया, और भरत को जब पता चला कि ये राम का सखा है, तो भरत तो इतने प्रेम में पिघल गए कि मेरे स्वामी मेरे भाई मेरे प्रभु का मित्र मतलब मेरे समान है, मतलब भाई के समान मेरे लिए पूजनीय, तो भरत जी उसको अखबार में भर लिए, तब ये नैनों से रोने लगे कि मैं इतना नीच जाति का हूं, जातु साह ले ही सींचा, मेरे परछाई भी किसी को पड़ जाए ना तो वो लोग गंगा में नहाते, कुछ पहले देह में देहांत में ऐसा होता था निम्न जाति, उसको छूने पर स्नान करते थे ब्राह्मण लोग, उस जाति के थे, बोले जिसको छूने पर लोग गंगा स्नान को जाते थे, मैं इतना निम्न हूं, लेकिन आज सूर्य वंश का कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुझे क्या कर रहा है, भुजा में, और अयोध्या रघुपुर की संतान श्री भरत मुझे प्रणाम कर रहे, ये सब क्यों हुआ, तब उन्होंने जो लिखा बोला अपना भाव कि राम कियो आपन जब हीते, भय हूँ भुवन भूषण तब हीते, जब से राम जी ने मुझे अपना बनाया तब से मैं निम्न होते हुए भी त्रिभुवन में क्या बन गया, आभूषण बन गया, जिसको राम अपना ले कृष्ण अपना ले उसकी कीर्ति को चार चार लग जाता, इसीलिए कृष्ण की शरण जिसने ली वही सार, वो सफल है, इतनी सुंदर बात करी, मैं इतना निम्न था मुझे कोई देखता नहीं पूछता नहीं, लेकिन राम जी ने मुझे गले लगाया था ना, इसलिए आज वशिष्ठ भी लगा रहे हैं, भरत भी प्रणाम करे, राम अपना बना ले वो व्यक्ति आभूषण बन जाएगा, ऐसे यहाँ पर जैसे वो सुना रहा कि कृष्ण ने हाथ में ले लिया तो वेणु त्रिलोक में महिमा मंडित हो गई, ये सब कृष्ण की शरण का कमाल, भुजे सवे वेणु शिरसि शिखी पीच कटी तटे, दुकूलम नेत्रांते सहचर कटाक्ष विदधते, सदा श्रीमद् वृंदा वन वसती लीला परिचय, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जिसके बाएं भुजा में वेणु है शोभा पा रही है, दूसरा विशेषण शिरसि शिखी पिच्छ, जिसके शीर ऊपर शिखी, शिखी कहते हैं मयूर को, पिकॉक मोर को, क्यों शिखी कहते हैं, क्योंकि उसके शीर पर एक शिखा होती है स्वभाव जन्म से, कल की आप कहते हैं ना जिसको शिखंड, इसलिए शिखंडी कहते हैं मयूर को, भागवत 10-20-20 वर्षा ऋतु का वर्णन, उसमें वर्षा ऋतु जब होती है तो बादल छाते हैं, गरजते हैं, मोर नाचते हैं, सुखदेव जी ने देखा है, इसलिए वहां पर लिखते हैं मेघागमवत् सृष्टा प्रत्यनंद शिखंडिना गृहेषु तप्त निर्वीणा यथाच्युत जनागमे। जैसे मोर जो होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु में तपते हैं बेचारे गर्मी से, लेकिन जैसे ही घुमड़ घुमड़ कर बादल आ मेघा आगम तो उसको महोत्सव मानकर प्रत्यनंद शिखंडिना मोर क्या करते हैं आनंद में नाचने लगते हैं। जैसे गृहेशु घर संसार चिंता उपाधि में ग्रस्त मरता है दुखी चिंता, लेकिन अच्युत जना कोई कृष्ण का प्रेमी भक्त आ जाए और कृष्ण कथामृत की वर्षा करे प्राणाय कारुण्य घना घनत्व वंदे गुरु श्री बादल की उपाधि है ना जो करुणा की वर्षा करे संसार दावा नललीड हो, कोई प्रेमी गुरु वैष्णव जीवन में आकर कृष्ण कथा की वर्षा करे और हमें इस संसार दावानल से प्राणाय प्राण करे। और वो भक्त भी ग्रस्त चिंता भूल जाता है दुख भूल जाता है उस भक्त की कथा से, वैसे ही यहां मोर इस बादल के गर्जन से अपना दुख भूलकर आनंद में, तो वहां शिखंडी कहा गया है मोर मयूर को, क्योंकि जिसके सर पर शिखंडी मतलब कलगी है, कलापी कहते हैं जिसको मोर, जो जानते हैं नित्य आदि कलाओं के गुरु है कलापी, या जैसे शिखंडी यहां पर शिखी पृच्छ शिरसी, देखिये भगवान मोर पीछ लगाते हैं ये बरहा पीड नटवर वपु, कल हमने सुना है बरहा मतलब मयूर, जैसे इसमें भी हम गए ना अभी श्रृंगार दर्शन में वेणु पणंत अरविंद दलायताक्ष, फिर क्या है बरहा वतंस अवतंस, बरहा का ही मुकुट अवतंस माने शिरोभूषण मुकुट समसितांबुंद सुंदरांग अंबुद पानी, अंबु मतलब जल, द मतलब देने वाला, बादल को अंबुद कहते हैं और सुंदर बादल की तरह भगवान सुंदर लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर का वर्ण बादल जैसा है घनश्याम। तो मधुबन में जब माधव मुरली बजाते हैं तो ये जो मोर है वृंदावन के वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि बादल आ गए, बादल नहीं आए कृष्ण आए, लेकिन कृष्ण कैसे, और जब वो वेणु नाद करते हैं वो क्या है बादल का गर्जन, कृष्ण बादल समझते हैं मोर और उस वेणु के स्वर को क्या समझते हैं बादलों का गर्जन, और इसलिए मयूर एकदम आनंद में क्या करने लगते हैं नृत्य। जब मोर नाचने लगते हैं तो श्याम सुंदर भी उनको तो चाहिए ही चाहिए, नटवर वो है वो भी कृष्ण को नृत्य बहुत पसंद है ना, तो वो भी नाचने लगते हैं। तब मोर क्या करते हैं प्रसन्न होकर कृष्ण को अपना गिफ्ट देते पंख गिरा देते हैं और भगवान उस गिफ्ट को उस अमूल्य भेंट को कहां लगा देते हैं सिर पर कि हमको प्रेम से भेंट दिया है मोर पर। पशु भी देना जानते हैं, केवल बस कलियुग में मनुष्य ही जो केवल लेना बैंक है नाम देता नहीं, लेकिन बस मंदिर में भी आते लेने के लिए भगवान, लेकिन यह वृंदावन के मोर भी कृष्ण को क्या करते हैं देते हैं अपने पास जो है मयूर। और हमने साहित्य में सुना है संतों से कि मयूर हमारे भारत का तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, नेशनल बर्ड माना है इसका। और मोर के विषय में विशेषता है कि उसमें मैथुन नहीं प्रजनन नहीं, मोर अपनी आंखों से ऋतुकाल में बिंदु गिराता है और मोर ढेल जो होती है वो पी लेती उसी से गर्भ रह जाता, इसलिए शायद इतनी पवित्रता है इस पक्षी में, भगवान उसके पंख को मस्तक पर धारण करते हैं मोर पंख को। और मोर एक हमारे गुजराती में कहते हैं मोर ना इंडा चित्रवर पर, और मयूर जब इंड उसका अंड भी होता है ना वो भी उसमें डिजाइन, जैसे मोर के शरीर को आप देखे ना कलर उसमें भी वो पेंटिंग होता है, ऐसे पेंट मोर होता है नेचुरल, वो तो भगवान की व्यवस्था है। और यहाँ तक कि वृंदावन में शिरसी छिकी पीछे आप चाहे ब्रजमंडल करेंगे उसमें एक वन आएगा मयूर वन, मोरों का ही वन, और आप बरसाना जाएंगे तो वहां तो एक दर्शनीय स्थल है गहवर कुंड के पास मोर कुटीर मयूर कुटीर, मानगढ़ है ना मयूर कुटीर, आप शायद कुछ लोग गए होंगे तो देखे होंगे बड़ी सुंदर लीला, राधा रानी भगवान श्याम सुंदर से मान करके मानगढ़ पर चढ़ जाती और उसी को रिझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण नित्य कला अखिल विशारद नित्य करते हैं। भगवान कृष्ण कहे राधा रानी को कि हे प्यारी जो हे वृषभानंदिनी आपका मुख कमल है ना, वो चंद्रमा के समान सुंदर, ऐसा लगता है कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की अवली समूह आपके मुखमंडल में छा गया। और राधा रानी प्रेम से श्याम सुंदर प्रसन्नता करते हैं, लेकिन उल्टा सर, उसने कहा जो मुझे पता है तुम चंद्रावली को याद करते भगवान के पास, भगवान वास्तव में चंद्रावली को याद नहीं करते। बोले चंद्रा अवली मतलब करोड़ों करोड़ों में चंद्रमा जैसा तुम्हारा मुख है। तो बोले मुझे पता है तुम मेरे पास हो, लेकिन बात भूले चंद्रावली को याद करते। भगवान फिर मना कि देखो प्रिया जी, मैं सच में चंद्रावली को आज भी याद भी नहीं किया, अभी तो बिल्कुल याद नहीं करता था। तुम ऐसा गलत मत समझो, अरे तुम्हारे मुख की शोभा मुझे जो हृदय में भाव आया वो मैंने बताया कि वास्तव में तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है। तो राधा रानी ने कहा फिर गलत, भगवान का फिर क्या गलत। बोले चंद्रमा में दाग है, मेरे मुख में कोई दाग है? फंसा बाकी बिहारी जी फंसे। और चंद्रमा में कलंक है चरित्र में भी, मेरे चरित्र में कोई कलंक है? भगवान कहते नहीं। और चंद्रमा की कला घटती है बढ़ती है, क्या मेरी सुंदरता भी घटती बढ़ती है? भगवान क्या है उमा थे करम नबड़ा हुआ ऊंधू पड़े। ये तो लीला है, लेकिन हमें भौतिक स्तर पे उदाहरण दिया जाता है। एक व्यक्ति कहा कि मैं कुछ भी करूं पत्नी नाराजी होती दुखी होती है। बोले तुमको आता नहीं, पत्नी को प्रसन्न करना एक ही काम है, वो जो भोजन बनाए उसकी प्रशंसा करो। बोले न लायक हो तो भी करो, खुश हो जाएगा, तुम्हारा सब काम होगा। अने वो लोग खड़े जिनके वाह क्या इतनी दाल सुंदर है, आज तो सब्जी सुंदर है। बोले कि आज बार दी मगर
मारी भाव भी
क्या कभी प्रशंसा नहीं आज किया तो फिर उसको क्या पता कि आज, बोले आज मैं बीमार थी थोड़ा बुखार जैसा था तो आज ही मैंने मंगाया था हरे कृष्ण दाम गोविंदा से। अच्छे करने गया लेकिन कर्म फिर ऐसे भगवान कुछ घुमाने के लिए बात की कि चंद्रमा फिर भी चंद्र। और राजा रानी मान करके रूठ के चली गई मान कर। अब भगवान ललिता से विशाखा से कह रहे कि देखो सर तुम तो जानती हो, प्लीज आपकी प्रिया को मनाओ। बोले नहीं अभी तुम्हारे तब गलती है, हुक्म दाया गया, प्रशंसक कौन बोला था? सीधा प्रसाद खाना चाहिए था, प्रवचन करने को कौन बोला तुमको? अरे भाई मैं ऐसे ही किया हो गया, प्लीज मना उसको मना। बोले एक उपाय है, ऐसे नहीं माने तुम तो सब कला उसार जानते हो, एक काम करो तुम मोर बनो और नृत्य करो, और प्रिया जी को मोर नृत्य कला पसंद है, फिर हम कुछ करती हैं। तो महानगढ़ तो ऊपर आप गए होंगे प्रसन्न, और भगवान तो ललिता विशाखा तो योगीराज योगेश्वर है, और मोर बन के इतना सुंदर नाच रहे, और ललिता विशाखा महानगढ़ पे कहती देखो राधा रानी वो सामने कितना सुंदर मोर है। तो राधा रानी देखती है, और राधा रानी को देखते कृष्ण तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिना नाच रहे क्योंकि अपना कोई देखता है तो स्टेप और बढ़िया होता है ना, कोई देखने वाला नहीं तो मैं जानता किसी को, तो भगवान ऐसे नाच रहे। देखो राधा को मन बन के मोर का नृत्य कला देख के चलो उधर जाते हैं। राधा रानी ललिता विशाखा सब राधा रानी को लेकर आई, और मोर के नाच को देखकर राधा रानी इतना प्रसन्न हो गई, और मोर को आलिंगन में लेने जाते ही मोर में से मोर मुकुटधारी हो गई। वही कंपनी मुझे पता था यही होगी, ललिता तुम भी इनके साथ मिली हो, अंदर से तो ऐसे प्रिया जी भी मिलना चाहती है राधा रानी, लेकिन बाहर से इस तरह करती है। तब भगवान कहते अब हो गया सो हो गया, अभी छोड़ फिर से नहीं कहूंगा। चंद्रमा के साथ आपकी उपमा कभी नहीं दो, चंद्रा तुम्हारी उपमा कहीं दी जा सकती है, मेरी गलती हो गई, अब मान मत करना। तो राधा रानी कहते एक सेवा करो, क्या आदेश दो? बोले मुरली बजाना सिखाओगे? भगवान ने कहा तुम मान करना सिखाओगी? और जो मर जो पैसा न थी तू आ सीख पाड़ वहां सीख पाओ, हाँ बोले सिखा। भगवान कहे पहले मुझे सिखाओ मान करना, और मान राजा रानी ने कहा कि पहली मान की कला है कि जिसके प्रति मान हो उसके सामने देखने का बैठो। और जैसे बैठे राजा रानी ऐसे आई तो है फेल नापास। बोला ना कि जो भी व्यक्ति इधर उधर घूम जहां बोले उधर घूम जाने का, देखने का मान का प्रथम लेशन कि जिसके प्रति मान हो उसके सामने देखने का नहीं। लेकिन राधा रानी सामने आए और भगवान न देखे ये तो मुश्किल है इनके लिए, श्याम सुंदर के लिए। फिर राजा रानी ट्राई की, बोलो फिर एक चांस दो, और जैसे राजा ने घूम पूरा परिक्रमा, लेकिन भगवान बाकी वाह एक्सीलेंट ए प्लस नर्सरी ए प्लस था भाई। दूसरा लेसन, ये मान करने वाला व्यक्ति ऐसे घूमेगा नहीं देखा तो फिर वो बात बोलेगा, लेकिन सामने बोलने का और घूम के बाद परिक्रमा में राजा ने कहा प्यारे श्याम सुंदर हाँ फिर बोला ना कि बात नहीं करने का, ये तो प्रेम से बोलेंगे फंसाएंगे इसी तरह, उल्टा देखते रहने का और बात नहीं करने का। अच्छा ट्राई करता हूँ। इस तरह भगवान ए प्लस में आते आते ए डबल प्लस पे पहुंच गए और राजा रानी बोल रही है प्यारे श्याम सुंदर सुनो नहीं अब तो सीख गए। अब राजा रानी को पसीना नहीं कभी 15-20 मिनट बोल सचमुच राजा रानी समझी कि सचमुच में रुट गया हमसे और अब मूर्छित होकर रोने लगी और गिरने लगी तो भगवान ने पकड़ लिया, अरे मैं तो एग्जाम दे रहा था तुमने कहा ना। तब राजा ने कहा इतना थोड़ा सीखा है तो तुमको एक्स्ट्रा सीख लिया तुमको। बोले मैं तो मेरे प्राण ही निकल जाते अगर तुम नहीं बोलते तो। तब भगवान ने कहा एक बार मान किया और प्राण निकले, दिन में 25 बार तुम मेरा पसीना निकालते हो, थोड़ा तो दया किया करो। लेकिन ये मान राधा रानी जानते कि कृष्ण को इसमें आनंद आता है इसलिए करते। और फिर मयूर मैंने कहा दोनों नाचते हैं क्योंकि नृत्य कला में तो प्रिया जी भी उस्ताद है राधा रानी ने। तो भगवान श्याम सुंदर की ब्रज में ये लीलाएं होती हैं, शिरसि शिखि पिच्छर कटि तटे दुकुलम, दुकुल मतलब दू मतलब दो, कुल मतलब किनारे, वस्त्र को दो किनारे होते हैं ना साड़ी या धोती कुछ भी लो, कुल मतलब किनारे, दुपट्टा पट्टा दो, दो मतलब दो मतलब पीतांबर, कभी ऐसे बांधते हैं और कभी कमर में भी गाय चरानी होती है तो कमर में भी कसते हैं। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुकुलम कटी तटे, जिसने पीतांबर को कटी पर कसा है ऐसे ही मतलब बांध दिया, बड़ा सुंदर। नीलांबर धरो राधा पीतांबर धरो हरी, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गति मम। राधा रानी नीलांबर पहनती है और श्याम सुंदर पीतांबर, क्यों पहनते हैं क्योंकि तप्त कंचन राधा रानी अपने प्रिया का वर्ण ही ऐसा है, इसलिए वो इसी अपनी प्रिया के वर्ण को ही पहनते हैं बांके बिहारी पीतांबर। और इसको बड़े बड़े विद्वानों ने गाया है, कनक कपिसर उस श्लोक में है ना बरहा, कनक मतलब सोने जैसा वस्त्र, पीतांबर सोने की तरह चमकता है। और हमारे पितामह भीष्म ने भी इसको याद किया, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौरवरम वरम दधाने, रवि मतलब सूर्य, कर मतलब किरण, सूर्य की पहली किरण कैसी होती है लाइट येलो चमकती हुई, गौर चमकती हुई लाइट येलो, बरम बरम दधान अंबर मतलब वस्त्र, दधाने मतलब धारण करना। ये श्याम सुंदर क्योंकि सिंगार आरती तो कुरुक्षेत्र में सबसे पहले इसको ही होता था ना, सामने पक्ष को ही भगवान अर्जुन सारथी बने हुए रथ हाँकते हुए आते थे तो सामने गंगा पुत्र होते थे, तो सिंगार दर्शन गंगा पुत्र 18 दिन किए और गाये भी है इसलिए स्तुति में कि क्या शोभा थी आपकी, और जब आप मेरी व्रत प्रतिज्ञा के लिए जब रथ से कूदे तो घंतुम इभम गतोत्त पीतांबर आपके पहले लहरा के कूदे, और वो जो पीतांबर की स्टाइल थी पीतांबर ने उसी समय कैच कर लिया फोटो, जैसे कहीं पकड़े जैसे कोई कूदता है उसी समय किया जाता है ना, वाह पट पीत की फहराए, जब कृष्ण दौड़े अपने अपने अर्जुन को बचाने के लिए रथ का चक्का लेके भीष्म को मारने, तो जो रथ होता था उसको जो लगाम के पास जो होता है ऐसा खिला जैसा उसके ऊपर हाथ रख के सीधा जंप लगाए, जंप लगा दे पीतांबर ऐसे घूम गया। तो भीष्म कहते क्या स्टाइल है आपके पीतांबर की, वो पट पीत की पहराए, उसी पर फिदा हो जाएंगे वो जो दुपट्टा ऐसे हवा में गिरा और ऐसे दौड़े जैसे सीख सिंह गज को मारने के लिए दौड़ता है, कृष्ण सिंह भीष्म गज के ऊपर कूद पड़े। पितामह ने दृश्य देखा स्तुति में याद करते हैं, तो वहां पर भी पीतांबर का वर्णन पितामह याद करते हैं कि आप पीतांबर पहनते हैं, जैसे यहाँ वर्णन है कटी तटे दुगुलम, मैंने सोचा एक लाइन कर पूरी कर दूं इसलिए यहां तक मैं बोल दिया, आगे कल सुनेंगे। क्योंकि बहुत मधुर वर्णन है इसके बाद। नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते सदा श्रीमद वृंदावन वसति। बस इसी तरह भक्तों के संग में भगवान की मधुर लीलाओं को गाना सुनना, उसमें चित्र लगाना, यही जीवन की परिपूर्णता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतिम काल में अपने पूर्ण राधा रस को गंभीरा में लूट रहे हैं, इसी तरह जगन्नाथ अष्टकम के। तो हमने भी यथामति समय आप वैष्णव के चरणों में इन शब्दों को रखा। निश्चित आप दुकुल कार समझे होंगे, दो किनारे पीताम्बर शीर शीर्ष के बीच, इस तरह बस याद करते हुए उस लीला को याद करना है और उसी में रमना है। कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च मन्ति च। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आपने जो बताया उसमें?
हरे कृष्ण।
यस प्रभु जी,
आपने बताया कि चंद्रमा में दाग है,
हाँ।
बाद में बताया चंद्रमा में कलंक भी है,
हाँ।
तो कलंक में जरा
उसके चरित्र में कलंक है, उसने गुरु पत्नी का गमन किया था। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा से संग किया था, जो कि उसमें भगवत, जो कि जो तेजी यशाम दोष आए, जो तेजस्वी पुरुष होता है उसको दोष नहीं लगते, लेकिन काम तो गलत किए थे चंद्रमा। अब भागवत जी में कथा है चंद्रदेव की कि उसने कलंक काम किया, इसलिए राजा रानी कहा कि हमारे चरित्र में कोई कलंक नहीं है। लेकिन हमें चंद्र या सूर्य को, जैसे भागवत में उदाहरण दिया है कि सूर्य है वो सारा गंदगी सोच लेता है, लेकिन क्या सूर्य गंदा होता है? उसका तप तप उसकी इतनी पवित्रता है कि उसको कोई फर्क नहीं। जैसे अग्नि होता है उसमें घी डालो तो भी स्वाहा, मलमूत्र डालो तो भी, लेकिन मलमूत्र डालने से अग्नि अपवित्र होता है नहीं, क्योंकि इनसे जो तेजस्वी है उसको दोष नहीं लगता। लेकिन फिर भी गलती दोष तो दोष है ना, करना नहीं चाहिए। वो उनके जैसे करोड़पति कहीं एक दो रुपये यूज करे उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चंद्रमा का ये चरित्र है कि उसमें एक कलंक था। इसको कभी आप भागवत से या रामायण से पढ़िएगा। और कोई प्रश्न माताओं का? ठीक है, तो बस बांके बिहारी का ही हमने वर्णन किया और उसकी प्रिया राधा रानी का, यही वृंदावन की मधुर लीला है। कार्तिक महीना आ रहा है, कुछ भक्त वृंदावन जा भी रहे हैं, तो कल वर्णन आएगा सदा श्रीमद वसति वृंदावन लीला परिचय। हरे कृष्ण। फिल्म बहुनाद की। ओके।